Sí. आयत नंबर 109 सूरत अल माईदा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मोमिन बंदों को कयामत की हौलनाकियों से डराया है। रुकू नंबर 15 और रुकू नंबर 16, 109 से लेकर 120 तक कयामत के दिन के आमाल अहवाल का हिसाब किताब और सवालों जवाब का जिक्र है। और इन पूरी आयात में जो चीज बहुत नुमाया है वो है मुहासबा, पूछगिछ। और वो मुहासबा भी किसका? पैगंबर का। और पैगंबर भी कौन से? जो बड़े जलील कदर थे, बड़े बड़े मोजजात देकर अल्लाह ने उनको जो है वो दुनिया में भेजा। आइए इन आयात को समझते हैं। यौम यजमाउल्लाहुर रुसूल फयकूल, यौम यजमाउल्लाहुर रुसूल फयकूल फयकूलु माज़ा उजिबतुम कालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। कयामत का दिन होगा नफसा नफसी का बड़ा ही सख्त दिन। कयामत के दिन को कुरान कहीं अलवाकिया, अलकारिया, अलगाशिया, अजिलजाल, अन्नबा मुख्तलिफ नामों से याद करता है। और यहाँ पे उस दिन की जो है वो सख्ती का अंदाजा कीजिए और फिर खास तौर पे उसकी इस संगीनी जो है उसको महसूस करें कि कयामत के दिन सबसे पहले सवाल अंबिया कराम से होगा। यौम यजमाउल्लाहुर रुसूला, जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा। अब आप देखें कि इब्तदाई सवाल तमाम रसूलों से बहसियत मजमूई होगा, तमाम रसूलों को जमा करके फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उनसे जो है वो पूछेगा, सारे नबियों से पूछेगा। फयकूलू माजा उजिब तुम, क्या पूछेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया। फयकूलू, फिर वो पूछेगा माजा उजिब तुम कि तुम्हें क्या जवाब मिला। जीम वा, इसके मानी होते हैं जवाब देना। लफ्जी मानी है सुराख करना, छेदना। तो जैसे कोई जब सवाल करता है तो उसका सवाल जो है वो फिजा को चीरता हुआ दूसरे शख्स मुखातिब तक पहुंचता है ना, और फिर वो उसका जवाब देता है। तो साला का ओपोजिट है जवाब देना कि माजा उजिब तुम कि तुम्हें क्या जवाब मिला। उलमा ने लिखा है कि माजा उजिबतुम का सीगा इस्तेमाल किया गया जो मजहूल का सीगा है, कि उस दिन अल्लाह इंतहाई दर्जा गजबनाक होगा, सख्त गुस्से में होगा। और इसलिए जो है ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि इन कौमों ने तुम्हें क्या जवाब दिया था, अल्लाह उनका जिक्र भी नहीं करेगा बल्कि पूछेगा तुम्हें क्या जवाब मिला था। बारीकी समझ रही आप? एक होता है कि जब कोई बात की जाए कि फाइल का भी जिक्र होता है कि जब आपने फलां से सवाल पूछा था तो फलां ने क्या जवाब दिया था। दूसरा ये कि फलां का कोई जिक्र नहीं, तुम्हें क्या जवाब मिला। माजा उजिब तुम्हें क्या जवाब दिया। इसकी मिसाल हमें कुरान में एक और भी मिलती है कि जिसमें जो है वो फाइल का जिक्र नहीं होता, जो मजहूल होता है ना। इसकी खास बात क्या है कि इसमें फाइल का नहीं जिक्र होता। जैसे कुरान में तीसरे पारे में यह आयत भी है ना, वाइजल मऊदतु सुइलत बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कि जब जिंदा गाड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस गुनाह में तुम्हें जो है कत्ल कर दिया गया। अब उसमें होना तो यह चाहिए ना कि कातिलों से पूछा जाए कि तुमने कत्ल क्यों किया था, लेकिन अल्लाह की गजबनाकी कयामत के दिन इतनी शदीद होगी, इतना अल्लाह नाराज होगा कि कातिलों से रुख मोड़ कर उन मजलूमों से पूछेगा कि जो कत्ल कर दी गई और लड़कियां जो जमाने जाहिलियत में जिंदा दफन कर दी जाती थी, तो उनसे पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में जो है वो जमीन में दबाया गया था। तो यहां पे भी आप देखें कि कितना सख्त अंदाज है, मा जाओ जिब तुम्हें क्या जवाब दिया गया। और आपको पता है कि अल्लाह के जो रसूल हैं वो अल्लाह के एम्बेसिडर हैं, हर जमाने में रसूलों ने जो अल्लाह ने उनको पैगाम दिया था कि दावत का पैगाम, दीन का पैगाम वो लोगों तक पहुंचाएं, उन्होंने उसको अदा किया। और इसीलिए तो रसूल जो थे वो सारी जिंदगी ये काम करते रहे। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो थे वो रो रहे थे सूरत निसा की वो आयत के, जो कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से फरमाइश की कि अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की तिलावत करो। और जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु तिलावत करते करते इस आयत पर पहुंचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। आयत नंबर 41, फकैफा इज़ा जेन मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजे नबी का अला उला शहीदा। फिर सोचो उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब देखा तो आपकी आंखों से जारों कितार आंसू बह रहे थे और आपके आंसू जो है वो बहकर आपकी दाढ़ी मुबारक को तर कर रहे थे। और ये किस चीज का गम था? आपका दिल क्यों पिघल गया कि आपका दिल पिघल कर आंखों के रास्ते बहने लगा? ये जवाबदेही का एहसास था कि अल्लाह पूछेगा तो फिर क्या होगा, हालांकि आपने सारी जिंदगी जो है वो नजीर और बशीर बनकर जो है गुजारी। अब यहाँ पे भी यही है, माजा उजिबतुम, कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया? कालू ला इल्मा लना, उन्होंने कहा ला इल्मा लना, हमें कुछ पता नहीं, कि हम तो सिर्फ महदूद और जाहिरी जवाब को जानते हैं, कि हमें उनकी जिंदगी में वही जवाब याद है जो उनकी जिंदगी से जाहिरी तौर पर मिलता हुआ जो है महसूस हुआ, लेकिन हमारी दावत का रद्द अमल कहाँ और किस सूरत में कितना हुआ इसका सही इल्म आपके सिवा और कोई नहीं जानता। कालू ला इल्मा लना, अब आप देखें कि अंबिया कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं, हमें नहीं पता, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। अब आप देख लें कि आप भी किसी को दावत देती हैं, अल्लाह के दीन का पैगाम उन तक पहुंचाती हैं, तो बाज़ुकात वक्ती तौर पर लगता है कि मेरी दावत का तो कोई असर नहीं हुआ और आप मायूस होने लगते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि नहीं, उन्होंने तो बहुत असर कबूल किया था, हमें ही इस बात का पता नहीं चला। आप सोचते हैं कि मैंने फलां को दस की दावत दी, वो तो आया ही नहीं, उसने तो असर कबूल ही नहीं किया, लेकिन वो जो है वो क्या करता है कि वो सोचने लगता है कि हाँ जाना चाहिए, फिर वो आइंदा कहीं ना कहीं जो है वो दर्स की महफिल में पहुंच जाता है। तो ये जो अंबिया ने दावत दी, तो अंबिया की दावत का उस जमाने में उनकी कौमों और उम्मतों पर क्या असर हुआ? अब इस हिस्से में अंबिया कराम ये जवाब देंगे कि हमें उनके ईमान और अमल का कोई इल्म नहीं, आप ही तमाम गैब की चीजों से पूरी तरह जो है वो बाखबर हैं। तो इस सिलसिले में जो बात नुमाया तौर पर सामने आती है वो ये है कि बाज़ुकात ये होता है कि एक शख्स जो है जवाब बहुत अच्छा देता है, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या है उसकी कुछ खबर नहीं, क्योंकि दिल की बातें तो अल्लाह ही जानता है ना कि वो सच्चे दिल से ईमान लाया, सच्चे दिल से साथ देने वाला था या वो इनकार करने वाला था। तो एक राय ये है कि कालू ला इल्मा लना, कि हमें तो कोई खबर नहीं उनके इखलास की, उनके दिल की कैफियत की, या फिर ये कि उनके अमाल और अहवाल की। ये बात कालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, और फिर उसके साथ ये कि बेशक आप ही तमाम पोशीदा हकीकतें जो हैं वो उनको जानते हैं। तो यहां पर जो बहुत नुमाया बात है वो ये कि अंबिया कराम से सवाल होगा उनकी उम्मतों के रवैये के बारे में, और अंबिया कराम ये जवाब देंगे कि जब तक हम दुनिया में मौजूद थे तो जो भी उनका रवैया था हमसे ज्यादा है अल्लाह तू जानता है, और या ये कि हम उनके दुनिया में जो रवैया था जाहिरी तौर पर उसका कुछ इल्म रखते हैं, लेकिन बातनी तौर पर अमली तौर पर उनका सही रवैया क्या था वो हम नहीं जानते। या फिर इसके तीसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि जब तक हम थे दुनिया में तब तक तो उनका यही रवैया था जो हमें नजर आ रहा था, लेकिन हमारे जाने के बाद उनके रवैयों में दुनिया में क्या तब्दीली आ गई वो हम नहीं जानते। उनके रवैयों की तब्दीली का इल्म जो है अल्लाह आप ही को है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, क्या आप जो है वो गैब ही नहीं बल्कि गुयूब, आप जाहिर और बातिन आगे पीछे ऊपर नीचे तमाम चीजों का इल्म जानने वाले अल्लामा आप है। अल्लाम ये मुबालगे का सीगा है। इज़ क़ाल अल्लाहु, जब कहा अल्लाह ने, अब यहां पे ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर मिसाल के जो है पेश किया जा रहा है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप जो है सूरत आले इमरान में भी पढ़ चुकी, आपने सूरत निसा में भी पढ़ा, अब यहाँ पे भी उन्हीं का जिक्र है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है यानी अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा ए मरियम के बेटे ईसा उज़्कुर निअमती अलैक वअला वालिदतिक, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम उज़्कुर निअमती अलैक वअला वालिदतिक। फिर जरा तसव्वुर करो इस मौके का जब अल्लाह फरमाएगा ए मरियम के बेटे ईसा याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की थी। अब यहाँ पे जो है वो तीन बातें सामने आ रही हैं। पहली चीज कि अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो है वो जवाबदेही हो रही है, पैगंबर है जलीलुल कदर पैगंबर, और अल्लाह पूछ रहे हैं ए ईसा ए मरियम के बेटे। दूसरी बात उज़्कुर निअमती, और नेमत का लफ्ज़ इस्म जिन्स है कि मेरी नेमतों को याद करो। तीसरी बात अलैका व अला वालिदतिक, जो तुझ पर की और तेरी वालदा पर की, कि तुझ पर और तेरी वालदा पर जो मेरे इनामात की बारिश थी मेरी जो नेमतें थी जरा उनको याद तो करो। अब आप देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम पर क्या जो है वो इनामात किए। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि मैंने दुनिया की औरतों पर उसे जो है वो चुन लिया है ना, इस तवा अला निसा अल आलमीन, पूरी दुनिया की औरतों में से उसे मुंतखिब कर लिया। फिर दूसरी बात जो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो है वो बिन जो है वो शौहर के अल्लाह ने उनको ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दिया। और तीसरी बात कि मरियम अलैहिस्सलाम जब अपने अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपनी कौम में आई तो कौम के लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया और कौम ने इस बच्चे को वलदु जिना करार दिया, इन पर जिना का इल्जाम लगाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है क्या नेमत दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि बचपन ही में माँ की गोद में वो बोलने लगे कलाम करने लगे, फिर उसके साथ बड़ी उम्र में भी उन्होंने कलाम किया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को की मदद अल्लाह ताला ने रूह पाक से की और फिर नबूवत से उन्हें जो है वो सरफराज किया और ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात से जो है वो नवाजा, जो आप उनमें से काफी आप आले इमरान में पढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या नेमती अलैका वा अला वालिदतिक, अब ये नहीं कहा कि तुम्हारे वालिद पर क्या नेमतें की थी क्योंकि वालिद तो थे ही नहीं, तेरी वालदा पर क्या नेमतें की। इज अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस, अब यहाँ पे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नेमतों में से चंद एक का जिक्र कर रहे हैं जिनमें से पहली क्या कि मैंने रूह पाक से तेरी मदद की। अब यहां पर जो है मुफस्सरीन कहते हैं कि इशारा है उस साजिश की तरफ, वो साजिश जो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने और सूली देने के लिए तैयार की थी जिससे अल्लाह ने बचाकर उन्हें आसमान पर उठा लिया। तो अल्लाह ताला ने क्या की, रूहिल कुदुस से मुराद फिर कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जरिए जो है वो उनकी मदद की, पाक रूह से इनकी मदद की। दूसरी बात तुकल्लिमुन्नासा फिल महदी व कहला, कि तू गहवारे में भी लोगों से बात करता था और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी, कि जब उनकी वालदा पर जो है लोगों ने इल्जाम लगाया तो उस वक्त वो बोले कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, है ना, तो उस वक्त जो है उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। और आमतौर पर बचपन में लोग बातें नहीं करते, बहुत छोटी उम्र में और इस तरह से पूरी वाजे वाजे जो है वो बातें की जाए, ऐसा नहीं होता। बाल बच्चे बहुत बड़े होकर बोलना शुरू करते हैं और अब स्पीच थेरेपी उसका रवाज कितना है ना। तो उन्होंने फिर महद, और महद यहाँ पे माँ की गोद के लिए इस्तेमाल हुआ है, वैसे ये जमीन के लिए भी आता है, पंगूढ़े के लिए भी आता है। वह काहला, काहला जो है इसके मानी है बड़ी उम्र को पहुंचकर, उधेड़ उम्र। अब आप देखें कि आमतौर पे जब बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं ना तो भी फिर इतना बोलते नहीं है, उधेड़ उम्र में बोलना जो है मुश्किल होने लगता है, कि इंसान थोड़ा भूलने लगता है, हकलाने लगता है, या इस तरह से बातें नहीं करता। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि जवानी में बोलना, जवानी में तो बोलते ही है लोग, तो उन दो हालतों का जिक्र किया जिसमें आमतौर पर जो है वो बातें नहीं की जाती। तो तू कल मुन्ना सा फिर महदी व कहला, कि तू गहवारे में भी लोगों से बात करता था और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी तू लोगों से बात करता था। वह इज अल्लम तू कल किताबा, और इस जो है ये उस गुरु के मानी में भी आ सकती है ना। यहाँ पे उस गुरु है और क्या है कि, और फिर याद करो कि इज अल्लम तू कल किताबा, जब मैंने तुझको किताब सिखाई। मैं कहाँ पे है, अल्लम तू, तू जो है ना ये अल्लाह ताला के लिए जमीर आई है, कि मैंने सिखाई का ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा तुझको, अल किताबा किताब, और किताब से मुराद क्या है, इंजीर, इंजील, कि मैंने तुझे जो है वो इंजील सिखाई। वल हिकमत, और हिकमत जो है इससे मुराद है दानाई की बातें। आप देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दानाई और हिकमत की बातों से नवाजा था। और वैसे हा काफ मीम जो है इसके दो मानी होते हैं, एक तो होता है किसी को रोक लेना, वैसे इसके डिक्शनरी के लिहाज से मानी है कि जानवर को लगाम देना। जब जानवर को लगाम दी जाती है तो क्या होता है, उसको रोक लिया जाता है ना, ताकि वो इधर उधर मुंह ना डाले, इधर उधर ना जाए। तो एक तो मानी है रोकना, लगाम देना। तो इसी तरह जो हकीमाना बातें होती है ना वो इंसान को इधर उधर रोकती हैं, मोहकम मजबूत बातें, अच्छी बातें, दानाई की बातें। व तौरात अवल इंजील, और तुरात और इंजील की तालीम दी। अब आप देखें कि तुरात और इंजील का जिक्र जो है वो अलैहदा से जो है यहाँ पे आया है। तो ये क्या बात हुई कि पहले अल किताब कह दिया और उसके बाद जो है वो तुरात और इंजील का जिक्र आया। तो इस सिलसिले में जो है वो मुफस्सरीन कहते हैं कि अल किताब जो है ना, जैसे किसी चीज का लिखना, जैसे लिखी हुई चीज को कहते हैं ना, जाहिरी तौर पर महसूस होने वाली चीज, और हिकमत उसके अंदर जो फहम है। तो अल किताब से मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि उसका जो है वो लिखत पढ़त, और हिकमा से मुराद उसकी जो है वो सूझबूझ। तो किताब से मुराद खतो किताबत और जाहिरी इल्म है, और हिकमत से मुराद फहमो इदराक और बातनी इल्म जो लिखा नहीं जाता। और अलग से आ गया वत तौरात अवल इंजील, तो आपको सिर्फ इंजील ही की तालीम नहीं दी गई बल्कि तौरात की भी और इंजील की। फिर आगे मौजात का जिक्र है, वइस्तखलकू मिन अत्तीनी, वइस्तखलकू, और जब तू तखलीक करता यानी बनाता, मिन तीनी, और तीन कहते हैं गीली मट्टी को, कि जब तू गीली मट्टी से है बनाता, का है हत तैरी, परिंदे की शक्लो सूरत। तो हैयत जो है किसी की इब्तदाई, किसी चीज की इब्तदाई और रफ शक्ल को कहते हैं हैयत। इसका रूट है हा या हमजा, शक्लो सूरत। तो पहला दर्जा हैयत का होता है, दूसरा है शक्ल का। तो फिर तू क्या करता कि गीली मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता, और असल चीज क्या है, बेइज्नी, मेरी इजाजत से। तो यह है पहला मौजा कि तू मेरे हुक्म से मट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता। फिर दूसरा मौजा क्या था, फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरन बेइज्नी, फतनफुखु फीहा, फिर तू उसमें फूंक मारता। तो नफखा का मतलब होता है फूंक मारना, फिर तो उसमें फूंक मारता, जैसे मट्टी की शक्ल की इब्तदाई एक हैयत, एक शक्ल बनाकर फिर तो उसमें फूंक मारता, फतकून तैरम बेइज्नी, तो मेरी इजाजत से, मेरे हुक्म से वो परिंदा बन जाता। जैसे परिंदा नहीं होता बनकर फिर उड़ने लगे, तो कैरम जो है ये इसम जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मौजा किसने दिया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था। आप महसूस करेंगी कि यहाँ पे मौजात का जिक्र करते हुए बेइज्नी 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 की तकरार है, तो मानी क्या है कि ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की इजाजत थी, उनका अपना कोई क्रेडिट नहीं था। फिर तीसरी बात, वतुब्रेउल अकमहा, वतुब्रेउ और दुरुस्त करता, बारा हमजा इसके मानी है ठीक करना, दुरुस्त करना, और तू दुरुस्त करता अल अकमहा। अकमहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है ऐसे अंधे के लिए जो मां के पेट से ही अंधा जो है वो पैदा हो, मादरजात अंधे को कहते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, एक शख्स है कि दुनिया में अंधा हो गया और फिर वो ठीक हो जाए, अब जो मां के पेट से ही अंधा पैदा हो तो उसको ठीक करना, तो कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन यहाँ पे एक तरफ कहा वतुब्रेउल अकमहा कि तू मादरजात अंधे को बरी ठीक कर देता, यानी उसकी वो बीमारी को ठीक करता, और ये तीसरा मौजा है। और चौथा वल अवरासा, बारा स्वाद इसका रूट है, इसके मानी है सफेद निशान के जो इंसान के जिस्म पर होते हैं, वल अवरासा बेइस्मी, और वो भी मेरी इजाजत से। तो यह दोनों के लिए आया है कि मादरजात अंधे को भी मेरे हुक्म से ठीक करता और जिसके जिस्म पर सफेद निशान थे उनको भी। फिर इसके बाद जो है अगला अहम मौजा है कि जो उनको दिया गया था, वाइज तुखरिजुल मौता बेइज्नी, कि जब तू जो है वो मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता था, तुखरिजुल मौता, कि मुर्दा बिल्कुल ही जो है वो उसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई आसार नहीं है, मैयत, तो क्या करता, तुखरिजु उससे जिंदा कर देता, उससे जिंदगी देता, लेकिन असल बात बेइज्नी मेरी इजाजत से, मेरे हुक्म से। तो असल बात यह है कि मेरे हुक्म से ये काम करता था कि हालत मौत से निकालकर जिंदगी की हालत में ले आता था। अब आप देखें कि एक पैगंबर के बाद एक पैगंबर के पास इतने बड़े बड़े मौजे हैं, फिर क्या हुआ, वाइज कफ़फ़्तु बनी इसराइल अनका, अब जो है और जब मैं काफी हो गया बनी इसराइल से अनका तुझे बचाने के लिए, वाइज कफ़फ़्तु जब मैंने रोका बनी इसराइला बनी इसराइल को अनका तुझसे। अब आप देखें कि एक तरफ इतने बड़े बड़े मौजे, तो क्या वाकया पेश आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बनी इसराइल को रोकना पड़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने के लिए, वो तो इतना इतने मौजात इतने बयनात इतनी निशानियां लेकर आए, इतने जलीलुल कदर पैगंबर, इतना कुछ अल्लाह ने उनको दिया, अल किताब हिकमत तौरात इंजील कलाम महद में कहल में फिर ये सारे मौजात, तो बनी इसराइल को क्या पड़ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो थे उन्होंने बनी इसराइल से जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। कहा इस जेता हूं बिल बय्यनाती, जब तू आया इनके पास सरी निशानियां लेकर, ये सारी निशानियों का जिक्र है, इस जेता हूं बिल बय्यनात। अब आप देखें कि जेता जा आना, बा जाए तो लाना, कि जब तू लेकर आया अल बय्यनात ये रोशन निशानियां, फकाल अल्लज़ीना कफरू मिनहुम, तो कहा उन लोगों ने उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया था उनमें से, फकाल अल्लज़ीना तस कहा उन लोगों ने जिन्होंने कफरू कुफर किया, मिनहुम इनमें से, तो इसका मतलब है बनी इसराइल में से सब जो थे इनको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे, उनमें से कुछ लोग थे, एक ग्रोह था, तो उनमें से वो लोग जिन्होंने कुफर किया था, तो उन्होंने क्या किया, कुफर कैसे किया, इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, सारे निशानियां सारे मौजा देखकर फिर कहने लगे कि ये निशानियां तो जादूगरी के सिवा और कुछ भी नहीं है, तो इनकार करने लगे। इस सिलसिले में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है यहाँ पे जो इनकार करने वाले हैं कहते हैं कि ये यहूदी थे, यहूदी जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने और उनको सूली देने के लिए जब तैयार हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बचाकर आसमान की तरफ जो है वो उठा लिया, और यहाँ पे इसी चीज की तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो है वो बचा लिया, क्योंकि यहूदियों ने खुले मौजात देखने के बाद कहा ये तो खुला जादू है और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा, उनको सूली पर चढ़ाना चाहा, तो अल्लाह ताला ने इनकी साजिश को नाकाम बनाया, उन्हें अपनी तरफ जो है वो उठा लिया। और इस सिलसिले में आप ये बात भी याद रखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो उठाया गया तो मुसलमानों का क्या अकीदा है कि उनकी जिंदगी के साथ ही, और जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के उम्मती की हैसियत से दुनिया में जो है वो आएंगे और जो है वो दोबारा जो है वो आएंगे। तो यहाँ पे ये जो उठा लेना है, जो अल्लाह ताला का कफायत करना है, इसके माने यही है कि यहूदियों की जो साजिश थी उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अब यहाँ पे ये बड़ी अजीब बात है कि मौजाद देखने के बाद वो कहने लगे इन हाजा इल्ला सेहरुन मुबीन, ये तो खुला जादू है। ये बात याद रखें कि हर नबी के मुखालिफिन आयात इलाही और मौजाद देखकर उन्हें जादू ही करार देते रहे, वो यही समझते रहे कि ये जादू का फन है। अंबिया कराम का इन मौजाद से क्या ताल्लुक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अहले मक्का जादूगर ही कहते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो कुछ उन्होंने मौजाद पेश किए तो अब लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो जादू है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी जादूगर ही कहा। कैसी अजीब बात है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया भर के जो बड़े बड़े जादूगर थे उनके जादू का तोड़ किया और बताया कि मौजा और जादू दोनों में फर्क है, तो बहुत कम लोग जो थे उस मौके पे मुसलमान हुए, लेकिन ज्यादा लोगों ने जो है वो इनकार ही किया। तो यहाँ पे भी इन हाजा इल्ला सिहरुन मुबीन, ये तो जो है वो खुला जादू है। फिर आप देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए भी आपने पीछे पढ़ा ना कि वो क्या कहते थे कि वो जादूगर है, क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत अल बकरा में जो है वो बरात नाजिल की है, वहां पे जो है वो क्या कहा कि जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया था, वो जादूगर नहीं थे, बल्कि जो है वो कौन थे, वो तो अल्लाह के रसूल थे। तो जादू जो थे वो करने वाले कौन थे, वो दो फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो उनकी आजमाइश के लिए जो था वो भेजा था, जो जादू सिखाते थे, लेकिन साथ ही ये भी कहते थे कि जो है वो हम जो है कौन है, हम फितना हैं। वो कहते थे इन्नमा नहनु फितना फितनतुन फला तकफुर, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे बरात नाजिल की, वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वलकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर, के शयातीन ने जो है वो कुफ्र किया जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे, और ये कौन से थे, जिन्हों में से भी और बनी इसराइल में से जो जादू सीखते सिखाते थे, तो उन्हीं की आजमाइश के लिए फिर अल्लाह ने दो फरिश्तों को भेजा जो उनको जो थे वो जादू सिखाते थे, और साथ ही कहते थे कि देखो हम एक इम्तहान है, जो सीखना चाहता था उनको सिखा देते थे, सिखाने से पहले कहते थे कि ये अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ पे भी अब उन्होंने यही कहा कि इल्ला सिहर मुबीन। वइज औहैतु इलल हवारियीना, कि जब मैंने हवारियों को इशारा किया, औहैतु वौहा या वही, इल्हाम दिल में बात डालना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे वही का लफ्ज इस्तलाही मानों में नहीं है, दिल में कोई इरादा डालना उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पूरी कौम के अंदर से ये हवारी थे जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। वइज अवहैतु इलल हवारियीना, जब मैंने हवारियों को इशारा किया, अन आमिनू भी, कि ईमान लाओ मुझ पर, व बे रसूली, और मेरे रसूल पर, तो मुझ पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, और मेरे रसूल पर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ। तो ईमान लाने के मानी क्या है कि जो है वो दावत का काम जो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर कर रहे हैं, वो दावत का काम जो है इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करें, क्योंकि उनको वो काम जो है वो मैंने दिया है। तो ए हवारियो, ए लोगो, तुम जो है वो काम जो है वो करने लगो। अब आप देखिए कि यहां पर हवारी का लफ्ज बहुत अहम है, और हा वा रा के लफ्जी मानी होते हैं सफेद के लिए आता है, जैसे हौरा औरतों के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खूबसूरत सफेद रंगत वाली जो औरतें हैं, हौरा हूर जैसे आप कह लें। दूसरे इसके मानी जो है वो हौर जो है वो धोबी के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्यों कहते हैं कि उन पर उनके ऊपर जो ईमान लाए थे ईसा अलैहिस्सलाम पर, वो जो है वो कौम में से धोबी थे, वो लोगों के कपड़े धोकर सफेद करते थे, या वो खुद सफेद उजले हुए कपड़े पहनते थे, तो उनको जो है वो हवारी कहा जाता है। या फिर तीसरा ये कि उनका दिल जो था वो शिर्क से, कुफर से और इस तरह की जो बातें हैं, जो इनकार की बातें हैं, इनसे बिल्कुल पाक था, साफ था, सफा, बिल्कुल साफ और पाक था। तो उनके दिल की जो सफाई है, पाकी है, और उसके अंदर ईमान और इखलास था उनके दिल के अंदर, तो उनके अकीदे और अमल की सफाई, सुथराई, इखलास की वजह से उन्हें जो है वो हवारी कहा जाने लगा। तो बहरहाल, तो ये किसने उन्हें कहा कि तुम जो है मुझ पर ईमान लाओ, और ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली। कालू, वो बोले, आमन्ना, कि हम ईमान लाए, वशहद, और गवाह रहो, भी अन्ना मुस्लिमून, कि हम मुस्लिम हैं। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ईसा अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि हवारियों का तुझ पर ईमान लाना हमारे फजल और तौफीक का नतीजा था। तुझ में इतनी ताकत ना थी कि उस जुटलाने वाली आबादी में एक ही तस्दीक करने वाला तेरे बल बोते पर पैदा हो जाता, तेरे बल बोते पर नहीं पैदा हो सका, बल्कि क्या है कि मेरी तौफीक से और मेरे फजल से जो थे वो तुझ पर ईमान लाए, वो मुझ पर ईमान लाए। और यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि हवारियों का दीन क्या था, बी अन्ना मुस्लिमून, कि हम मुस्लिम हैं, उनका दीन ईसाइयत नहीं था, ये बाद के दौर की पैदावार है। तो उन्होंने क्या ऐलान किया, बी अन्ना मुस्लिमून। इस काल हवारियूना, जब हवारियों ने कहा, अब यहाँ पे हवारियों ने जो है वो चार बातें जो की हैं यहाँ हमारे सामने आती हैं, और आयत नंबर 112 से लेकर 115 तक चार आयात में ये माइदा का किस्सा जो है वो बयान किया गया है। अब हवारियों ने कहा, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्तकी रब्बू का अय्यु नजील अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने का एक माइदा नाजिल कर सकता है? तो पहली बात जो हमें पता चलती है, उन्होंने कहा या ईसा इब्ना मरियम, या ईसा इब्ना मरियम, इससे क्या बात पता चलती है, उनका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त था। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे, या ईसा इब्ना मरियम, ए मरियम के बेटे ईसा। तो पहली चीज, उनका अकीदा दुरुस्त था। दूसरी बात, हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या तेरा रब ये इस्तात रखता है, तो ये वो ऐन से है तेरा रब, यानी कौन इस्तात रखना, रब्बू का तेरा रब, अय्यु नज़िल अलैना, के वो हम पर नाजिल करे, माइदातन, माइदा, माइदा जो है इसका रूट है मीम या दाल, इसके लफ्जी मानी होते हैं झुकना, खाना, ताम, उसके लिए इस्तेमाल होता है, खाने के लिए को भी कहते हैं, और वो दस्तरखान जिस पर खाना चुना हुआ हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है माइदा। और जैसे मैदा भी आप बोलती है ना, मैं सोच रही थी शायद मैदा इसी से होगा, तो मायदा तम मिनस समा, कि आसमान से जो है वो मायदा नाजिल कर सकता है, यानी एक ऐसा दस्तरखान जिसपे खाने सजे हुए हों। अब ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कालु तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो है वो डराया है, क्या कहा है कि अल्लाह का डर इख्तियार करो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये क्यों कहा कि अल्लाह से डरो? असल वजह यह है कि कौम जब मुतालबा करती है, मुतालबा करके कोई मौजा मांगती है, और वो मौजा देखने के बाद अगर कौम ईमान नहीं लाती, फिर अल्लाह का अजाब आता है और कौम को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। जैसे सवाले अलैहि सलाम की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने जो है वो मोजे का मुतालबा किया कि इस पहाड़ से जो है ना हमारे लिए ऊंटनी निकाल कर दिखा, और पहाड़ से ऊंटनी निकली, और जब उन्होंने जो है फिर उस मोजे को देखने के बाद भी वो ईमान ना लाए और उन्होंने कुफ्र किया, तो फिर क्या हुआ कि फिर उनको जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया। एक चीख थी, एक चिंगार थी, एक अजाब था, है ना, एक अजाब था। इसका जिक्र हमें सूरत शम्स में मिलता है, كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تو کیسے پھر اللہ کا عذاب آیا کہ دم دما علیہم ان کو ہلاک کر دیا, سخت عذاب. اور دوسری بات ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ فسواہا, برابر کر دیا, کسی کو نہ چھوڑا, نہ چھوٹا نہ بڑا, عام اور خاص سب کو تہ خاک کر دیا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا یخاف عقباہا کہ وہ نہیں ڈرتا اس تباہ کن انجام سے, کہ اس نے کیا کیا, اللہ کو اس کا کوئی ڈر نہیں. اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو اسے کیا کہہ رہے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو اب یہ کہا کہ سوال مت کرو, کہیں یہ تمہاری آزمائش نہ بن جائے, کیونکہ حسب مطالبہ معجزہ دکھائے جانے کے بعد اگر تمہارے ایمان میں کمزوری ہو گئی, اگر تم نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے عمل نہ کیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے. تو اب یہاں پہ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا ہے, ان کنتم مومنین, اگر ہو تم مومن. قالو, وہ بولے کون, ذرا جان سے بولے, کون بولے,
حواری.
نریدو, ہم چاہتے ہیں, ہم ارادہ رکھتے ہیں, ان ناکل منہا, کہ ہم اس میں سے کھائیں. یہ تھا ان کا مقصد کہ ہم اس میں سے کھائیں. دوسرا, وتطمئن قلوبنا, اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. تطمئن, ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. توئے میم حمزہ نون, اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی ہے جیسے نفس مطمئنہ, اس کے معنی ہے چراغ کی لو کا ایک جگہ ٹک جانا. چراغ کی لو جو ہے نا, اس کا جو ہے وہ سیدھا ہونا, بالکل سیدھا ہونا, ٹمٹمانا نہیں. کیونکہ عام طور پہ موم بتی, آپ دیکھیں موم بتی آپ نے جلا کر رکھی, آپ ذرا پاس سے گزرے, آپ کے دوپٹے کی جو ہوا ہے, آپ کے چلنے پھرنے کی جو ہوا ہے, اس سے وہ لو ادھر ادھر ہوتی ہے. تو جب لو بالکل سیدھی ہو, روشنی بالکل سیدھی ہے, کھڑی ہے, اس میں کوئی لغزش نہیں ہے, اس میں کوئی ڈگمگانا نہیں ہے, اس کے لیے یہ اطمئنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اطمینان کا. اسی طرح برتن جو ہے, بعض اوقات آپ اس کو رکھیں, کبھی ادھر کو لڑکتا ہے, کبھی ادھر کو, وہ ایک جگہ ٹک جائے, استوار جم جائے, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو دل کا اطمینان, اس کے معنی ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے بھی نفس مطمئنہ اور عمل کے لحاظ سے بھی نفس مطمئنہ. جیسے حالات کچھ ہی کیوں نہ ہو جائیں, حالات کا مد و جزر, یا پھر نرم گرم حالات, یا آزمائشیں, یا کچھ بھی ہو, تو دل جو ہے نا وہ جمع رہے, ثابت قدمی, ثابت قدمی, جم جانا. تو اب ان کی جو ہے وہ بات کیا تھی, وتطمئن قلوبنا, تاکہ ہمارے دل مطمئن رہیں کہ ہم عقیدہ, ایمان, عمل کے لحاظ سے جو ہیں ہم بہت اچھے بن جائیں. فنعلم ان قد صدقتنا, اور ہم یہ جان لیں, ان قد صدقتنا, کہ آپ نے جو ہے وہ سچ کہا ہے, کہ آپ اللہ کے رسول اور جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہی ہیں. ونکون علیہا من الشاہدین, اور ہم ہوں اس پر گواہی دینے والوں میں سے, کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں پھر ہم بھی اس پر جو ہے وہ گواہ بن جائیں. اب یہ باتیں حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہی, اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا, کیا کہا, دعا کی, اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء, خدایا ہمارے رب, اللہم ربنا, دیکھیں اللہم کے بعد پھر ربنا آ گیا, اے اللہ, اے ہمارے رب, کتنا خوبصورت انداز ہے. جیسے کبھی آپ کے, آپ نے اپنی امی سے کوئی مطالبہ منوانا ہو تو کیسے, اے میری امی, اے اچھی امی, اے بہت ہی پیاری امی, ہے نا. اور آپ کے بچے آپ سے جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, کبھی ادھر سے घुसते हैं अंदर, कभी इधर से गोद में, कभी इधर प्यार, कभी उधर प्यार, फिर आपको हर तरफ से अंदर लेकर फिर क्या कहते हैं, अच्छी अम्मी प्यारी अम्मी आज प्लीज ये इतनी इजाजत दे दे, इतने पैसे दे दे, ये चीज ला दे, कुछ भी मुतालबा करते हैं ना। अब देखें कि पैगंबर जो है कैसा उनका खूबसूरत किरदार है, एक तरफ कौम को समझा रहे हैं कि इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अब कौम जो है और बातें सामने रख रही है कि ये भी फायदा चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। अब जो है قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا, अब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ए हमारे रब, अंजिल अलैना, नाजिल कर हम पर मायदा तमिन समा, आसमान से मायदा। मायदा यानी दस्तरखान जो है वो हमें दे दे, और मायदा जो है, मायदा के मानी क्या है, ऐसा बर्तन प्लेट या ट्रे को कहते हैं जिसमें खाना हो। तो एक राय क्या है कि ऐसा बर्तन प्लेट या ट्रे जिसमें खाना हो, और एक राय यह है कि दस्तरखान जिस पर खाना चुना हुआ हो। एक ही बात है ना, दस्तरखान पर भी खाना लगा हुआ होता है तो आप खाते हैं, ट्रे को सजा कर अगर सामने पेश कर दी जाए तो उसपे भी, उसको भी जो है वो खाया जाता है। तो ये इस सूरत का नाम भी है मायदा, ये सूरत का नाम भी है। तो अब यहां पर जो है क्या कहा कि आसमान से एक ट्रे, एक खान, एक दस्तरखान हम पर नाजिल कर, तकून लना ईदन, ताकि वो हमारे लिए ईद का मौका करार पाए। और ईद का जो मानी है, इसके लफ्जी मानी है दोहराना, लौट कर आना, और ये लफ्ज खुशी के लिए भी इस्तेमाल होता है, खुशी के लिए। जैसे मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दो ईदें दी है ना, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और यहाँ पे ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुशी का मौका बने, ले अव्वलीना, हमारे जो पहले लोग हैं, अगले लोग हैं उनके लिए भी, आखिरीना, और हमारे पिछले लोगों के लिए, सबके लिए जो है ये खुशी का मौका जो है वो बन जाए। तो अब यहां पर जो है इन्होंने जो है ये मुतालबा किया, और उसके साथ तीसरी बात कही, वह आयतम मिन का, और तेरी तरफ से ये एक निशानी हो, क्योंकि अब वो उनका भी तो इतने मौजाद देखने के बाद भी इनका ये मुतालबा था कि अन्ना कुला मिनहा व तत्मईना कुलूबुना व नामलान कद सदकताना व नकूना अलैहा मिन शाहिदीन। ये तीन चार बातें जब कही उन्होंने, तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे हैं, वह आयतम मिन का, ये तेरी तरफ से एक निशानी हो, पर झुकना और हमें रिस्क दे, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, और तू बेहतरीन रज़ाक है। कितना खूबसूरत अंदाज है, इसमें दरखास्त भी है, इसमें वजूहात भी बताई हैं, और इसमें फायदे भी बताए हैं कि पहलो रगड़ों के लिए खुशी का मौका होगा, और फिर एंड पर दोबारा वर्ज़ुकना, और दे दे हमको रिस्क, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, और तू तो सब रिस्क देने वालों में सबसे अच्छा देने वाला है, रज़ाक खैर। ये है दुआ मांगने का तरीका, कितना खूबसूरत है, तारीफ भी है, दरखास्त भी है, इल्तजा भी है, फायदे वजूहात सारी चीजें जो है वो सामने रखी हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हवारियों ने मुतालबा क्यों किया, वो तो ईमान लाने वाले थे, फिर उन्होंने ये मुतालबा क्यों किया। तो इस सिलसिले में मुफस्सरीन कहते हैं कि इनका ये मुतालबा ऐसे ही था इत्मीनान कल्ब के लिए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था, और आप सूरत अल बकरा में वो मुतालबा जो है वो पढ़ चुकी हैं, तीसरे पारे के आगाज, तीसरे पारे के बिल्कुल आगाज में, जहाँ पे जो है वो चार परिंदों का वाकया जो है वो आपने पढ़ा था, कि ईसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है क्या कहते हैं, इब्राहिम रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता काला अवलम तुमिन काला बला वला किल्ले यतमईन कल्बी, तो उन्होंने दिल का इत्मीनान कहा था। तो यहाँ पे भी तो एक राय मुफस्सरीन ने ये कही है कि दरअसल वो अपने दिल का इत्मीनान चाहते थे। दूसरी ये राय भी बयान की जाती है कि ये उनके बिल्कुल इब्तदाई जमाने का वक्त था, बिल्कुल शुरू था, तो शायद इसलिए उन्होंने ये मुतालबा कर दिया, जैसे ईमान लाए और बिल्कुल इब्तदा थी। तीसरी यह राय भी बयान की जाती है कि हवारियों में से उन लोगों ने यह मुतालबा किया हो جن کا علم و فہم عام لوگوں جیسا تھا. ایک ہوتے ہیں نا خاص الخواص اور ایک عام, تو یہ عام لوگ تھے.